तो सभी भक्तों का गोवर्धन इको विलेज में रविवारीय सत्संग कार्यक्रम संडे फिश कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। तो हर रविवार को सुबह 10:30 से 12:30 इस समय के बीच में हम रविवारीय सत्संग मनाते हैं। तो हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं कि इस रविवार की तरह हर रविवार संडे रविवार के दिन सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। 10:30 से 11 बजे तक कीर्तन रहता है, 11 से 12 प्रवचन और 12 से 12:30 श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का महाआरती होता है। 12:30 बजे सबके लिए लंच प्रसादम का व्यवस्था भी है। तो हर रविवार को यह कार्यक्रम है, तो सबसे विनती है कि हर रविवार को आकर इस कार्यक्रम का लाभ उठाए। आज हमारे साथ श्रीमान रूप रघुनाथ प्रभु जी है जो हमें प्रवचन देने वाले हैं। श्रीमान रूप रघुनाथ प्रभु जी राधा गोपीनाथ मंदिर के गुरुकुल में ही पढ़ाई किए। उसके बाद उन्होंने 1989 को मंदिर में पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी के रूप में सेवा प्रदान करना चालू किया। 89 से लेकर 94 तक वे बेलगांव में थे, वहाँ पे वे विलेज प्रीचिंग करते थे। 94 से लेकर 2001 तक उन्होंने श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर इस्कॉन चौपाटी वहाँ पे पुजारी के रूप में सेवा प्रदान की। 2001 से 2004 तक उन्होंने विलेज प्रीचिंग वापस से चालू की, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया और 2004 से यहाँ पे गोवर्धन इको विलेज में वे स्थित है और यहाँ पे आजू बाजू के जो भी गांव है वहाँ पे जाके वे लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। इसके साथ साथ अनेकों अनोखे धर्म स्थलों पर वे यात्रा भी लेके जाते हैं। तो हम आप सबसे विनती करते हैं कि पूरा कार्यक्रम का लाभ उठाए। 11 से 12 बजे तक यहाँ तक प्रवचन रहेगा और 12 बजे भगवान का आरती रहेगा। हरे कृष्णा। हम श्रीमान रूप रघुनाथ प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब बोलिए जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन हरि राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय गौरांगनिताय 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 जय गौरांगनिताय जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर గౌర్ ప్రేమానంది హరినామ సంకీర్తనకి శ్రీల ప్రభుపాదకి జయ ఓం అజ్ఞాంతిమిరాందస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురోన్మిలితమైన తస్మై శ్రీ గురువే నమః శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితమైన భూతలై స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగరజాతాం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణపదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీనితి నామినే నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణే జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరభక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ తాజ్ రవివారీయ साप्ताहिक सत्संग में आप सबका स्वागत है। कुछ दिन पहले ही बड़ा महोत्सव हम भारतवर्ष में मनाएं भगवान से जगन्नाथ की स्नान यात्रा, और अभी 1 तारीख को जगन्नाथ की भव्य दिव्य ऐसी रथ यात्रा भी मनाई जाएगी। तो सारे विश्व भर से लोग ये उत्सव मनाने देखने आते हैं। तो आज हम थोड़ी भगवान की लीला तो इतनी अनंत है कि कितने भी हम चर्चा करते रहे, जैसे कवि लिखते हैं कि अगर सारे जितने संसार में वृक्ष हैं उसके पेन बनाए जाए और सारे समंदर के साई बनाए जाए और सारी पृथ्वी का पेपर बनाए जाए और लिखते रहे जीवन भर, फिर भी भगवान की लीला जो है पूर्ण नहीं होगी। एक पंछी आकाश में कितना उड़ सकता है, लेकिन अपनी क्षमता से वर्णन करते हैं ताकि अपना शुद्धिकरण हो। तो हम पहले भगवान जगन्नाथ का मंत्र बोलेंगे, सब लोग पीछे दोहरने की कोशिश करें। देव देव जगन्नाथ प्रवर्ण प्रवनार्ति विनाशन त्राहिमां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। देव देव जगन्नाथ, सारे देवों में स्वयं भगवान जगन्नाथ, देव देव जगन्नाथ प्रवनर्ति विनाशनम। प्रवनर्ति मतलब बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में हम लोग आते रहते। विनाशनम, ये जन्म मृत्यु के चक्र को जो विनाश करते वो जगन्नाथ है। देव देव जगन्नाथ प्रवनर्ति विनाशन त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष, त्राहिमाम बचाइए कृपा करें। कौन? पुंडरीकाक्ष, जिनके आँख जो है कमल नयन के समान है, कमलाक्ष सुंदर उनके नयन है। पतितम भव सागर, कृपा करके हे पुनरीकाक्ष भगवान, मुझे ये जो भव सागर में पतित हो गया हूँ कृपा करके यहाँ से मुझे उठाइए। देव देव जगन्नाथ प्रवनर्ति विनाशन त्राहिमा पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। भाई सुभद्रा मैया के लिए भी मंत्र है, उसका भी हम दोहराएंगे। जय देवी भक्ति दात्री प्रसिद्ध परमेश्वरी, जय देवी सुभद्रेत्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। हम तो सुभद्रा से प्रार्थना करते हैं, जय देवी भक्तिदात्री, जो भक्ति प्रदान करने वाली है। जय देवी भक्तिदात्री प्रसिद्ध परमेश्वरी, आप भगवान की बड़ी प्रिय है। जय देवी सुभद्रे तुम सर्वेशां भद्रदायिनी, सब शुभ देने वाली है सुभद्रा देवी है। बलदेव जी से प्रार्थना करते हैं। नमस्ते तुहल ग्रामम, नमस्ते मुशलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सला। सुंदर उनका वर्णन करते हैं है? नमस्ते तो हल ग्राम, उनका जो आयुध है हल, हल मतलब जो क्या कहते हैं प्लो नांगर। नमस्ते तो हल ग्राम, जो हल को धारण करने वाले ऐसे बलराम जी को प्रणाम करते हैं। फिर नमस्ते तो मुनुशलायुध, जो मुशल धारण करते हैं, एक हल होता है दूसरा मुशल होता है, नमस्ते मुशलायुध। फिर नमस्ते रेवती कांत, रेवती किसका नाम है? उनकी जो भार्या है पत्नी उनका नाम है रेवती। तो नमस्ते रेवती कांत, जो रेवती के पति है स्वामी है उनको नमन करते हैं। और फिर नमस्ते भक्तवत्सल, और जो भक्तों को बड़े प्रेम करते हैं, भक्तों का संरक्षण करते हैं, प्रेम करते हैं, ऐसे बलराम जी को हम प्रणाम करते हैं। तो हमने भगवान जगन्नाथ बलराम जी और सुभद्रा मैया का मंत्र बोला। तो ये वर्णन आता है स्कंद पुराण में कि भगवान जगन्नाथ कैसे प्रकट होते हैं। उत्कल परार्ध में इसका वर्णन आता है, जगन्नाथ कैसे प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो आयु होती है 100 वर्ष की आयु होती है, तो ब्रह्मा जी की जो 100 वर्ष की आयु है उनके 50 वर्ष के पहले का जो काल होता है उसे प्रारध कहते हैं, और उसके बाद जो होता है उसे वो 50 वर्ष के पहले जो उसके प्रारब्ध कहते हैं और परार्ध 50 वर्ष के बाद उसे परार्ध कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक, अभी ब्रह्मा जी का उम्र जो है हमारे जैसे 50 वर्ष नहीं होते हैं, हमें 50, 60, 70 वर्ष की आयु मिलती है तो हमें बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं और कितने आसक्त हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की जो आयु है गणना करना भी मुश्किल है। कितनी पता है हमारा जो कलयुग है इसकी आयु कितनी है? 432,000 वर्ष एक कलयुग है, 432,000 वर्ष का कलयुग है, उसका डबल करो तो 864,000 वर्ष का द्वापर युग है, 864,000 वर्ष का, और उसमें और एक कलयुग ऐड करो तो 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग होता है, 12,96,000 ते त्रेता युग हो गया। उसमें और एक कलयुग ऐड करो मतलब 4 कलयुग मिलके 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है, ऐसे 43 लाख ईयर्स का एक चतुर्युग होता है, तो ऐसे 71 चतुर्युग मतलब एक मन्वंतर होता है, और ऐसे 14 मन्वंतर मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, रुतनी रात होती है, ऐसे 1 महीना और ऐसे 1 वर्ष, ऐसे 100 वर्ष ब्रह्मा जी जीते हैं। तो इसलिए हमारा जो मनुष्य जीवन के बारे में जो बोलते हैं एक क्षण भंगुर जीवन है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु के सामने हमारा जीवन कितना क्षण भंगुर है, एक फ्लैश की तरह है ब्रह्मा जी की आयु के सामने, और ब्रह्मा जी का आयु महाविष्णु के सामने एक पलक झपकने की तरह है। जब करुणोदक्षय विष्णु सांस छोड़ते हैं तो कई सारे ब्रह्मांड बाहर आते हैं, और जब महाविष्णु सांस अंदर लेते हैं कई सारे ब्रह्मांड अंदर जाते हैं, तो उतनी ब्रह्मा जी की आयु होती है। तो सोचे ऐसे ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक ये जो नीलाचल पर्वत है वहाँ पर लक्ष्मी नारायण स्वयं प्रकट रहते हैं नीलाचल पर्वत पे, और 50 वर्ष के बाद दारु ब्रह्म के रूप में जगन्नाथ प्रकट होते हैं। तैसे जब लक्ष्मी नारायण वहाँ पर नीलाचल पर्वत पर स्थित हैं तब ब्रह्मा जी वहाँ जाते हैं, और ब्रह्मा जी कठोर तपस्या करते हैं और लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रसन्न कराते हैं, और उनसे प्रार्थना, जब लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हो जाते हैं प्रकट हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी उनसे प्रार्थना करते कि हे भगवान आप कृपा कीजिए कि जो मैं कुछ आपसे मांगता नहीं, खाली एक चीज़ मांगता हूँ कि जो सारे भौतिक संसार में जीव हैं इनको एक बार आप वैकुंठ ले जाओ, क्योंकि इनकी दशा में देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि ये सारे जीव जो आए हैं वैकुंठ से आए हैं, गोलोक धाम से भगवत धाम से आए हैं, लेकिन इस संसार में जब देखता हूँ मैं तो जब वो कुत्ता बन जाता है तो उसको लगता है मैं कुत्ता ही हूँ, जीव है कौन है, भगवान का अंश है, ममई अंश जो लोग है जीव भूत सनातन, सनातन काल से जीव आत्मा जो है भगवान का अंश है। हम जो बोलते हैं ना ये मेरा हाथ है, ये मेरे वस्त्र है, ये मेरे पैर है, वैसा हम क्या बोलते हैं ये मेरा शरीर है, मेरी तबीयत ठीक नहीं बोलते, मैं तबीयत नहीं बोलते, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, माई हेल्थ इज नॉट गुड, तो मतलब मैं शरीर से कुछ अलग हूँ। जब देहांत होता है ना हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे थे बेचारे चले गए, कौन जाता है, वही हाथ है वही पैर है, 50 साल जिससे प्रेम किया वही व्यक्ति सामने पड़ा है, फिर भी हम तो बोलते चले गए, कौन चाहता है, सोल आत्मा जीव वो चला जाता है। तैसे ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान ये शुद्ध जीव है आपका अंश है, लेकिन इस संसार में आकर वो भैंस बनता है तो बोलता मैं भैंस हूँ, स्त्री बनता मैं स्त्री हूँ, वो पुरुष बनता मैं पुरुष हूँ, लेकिन अंततः वो जो है शुद्ध जीव आत्मा रो भूल गया है। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति का कोई पुत्र पुत्री है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, याददाश्त खो जाता है, तो कभी कभी वो भटकने लगता है, कचरा जमा करता है, थैला लेके घूमता है, वो भूल गया है कि मैं कोई लखपति का पुत्र हूँ पुत्री हूँ, भूल गया है। खाली उसको क्या करना है, उसको याद कराना है वो किसी का पुत्र है, उसके पिता बड़े अमीर है, हाँ उसका घर बार सब कुछ है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो इनकी दशा मैं देख नहीं पाता हूँ, जैसे मराठी में तुकाराम महाराज सुंदर अभंग कहते हैं, बुढ़ते हैं जना पहावे ना डोड़ा मनुने कड़वड़ा ये तसे। हाँ तुकाराम महाराज क्या कहते हैं कि जो संसार में लोग डूब रहे हैं अपने आप को, लोग यहाँ पर कोई भैंस है, कोई कुत्ता है, कोई चूहा है समझते हैं, वो नहीं है, वो शुद्ध जीव है, तो ये देख नहीं पाता, कृपा करके आप इनको एक बार उभारिए, एक बार आप वैकुंठ ले जाइए। तो लक्ष्मी नारायण कहते ठीक है जैसी आपकी इच्छा है, आपने इतनी कठोर तपस्या की, एक बार ही कर लेते हैं। लेकिन उतने में और एक व्यक्ति पे, सब लोग खुशी है, आनंद आनंद है, लेकिन एक व्यक्ति संसार में दुखी है, कौन? यमराज। यमराज आकर कहते हैं आप तो मुझे जॉबलेस कर देंगे, मेरा जॉब क्या है, लोग यहाँ पर कुछ अधर्म करेंगे, कुछ पाप करेंगे, कुछ गुनाह करेंगे, उनको शिक्षा देना है, उनको संभालना है, और आप तो अगर सबको वैकुंठ ले जाएंगे तो मैं तो जॉबलेस हो जाऊँगा, कुछ काम ही नहीं, कुछ काम धंधा नहीं रहेगा। तो भगवान के पास दोनों महाजन हैं, ब्रह्मा जी भी महाजन है, यमराज ऐसे, यमराज तो शिक्षा देते हैं लेकिन वो भी महान भक्त है, वैष्णव है, हाँ महाजन है, जो सारे शास्त्रों को जानते हैं। तो उनको खुश करने के लिए लक्ष्मी नारायण कहते चिंता मत करो, हम कुछ समय के लिए अंतर्दान हो जाएंगे, लेकिन याद रखना हमारे जो भक्त होते बड़े चतुर होते, कृष्ण भक्त बड़े चतुर, भक्त बड़े चतुर होते, कहीं ना कहीं से भगवान को ढूंढ के निकालेंगे। जैसे इस्कॉन में जब कोई भक्त आते हैं तो कहीं भी जॉब के लिए जाएंगे तो ढूंढ के निकलेंगे प्रसाद कहाँ मिलता है, बराबर ना, कहीं भी जाएंगे जॉब के लिए जाएंगे, यात्रा के लिए जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, बाहर तो कुछ खाटल में खाना नहीं है, हाँ तो सत्संग कहाँ होता है, प्रसाद कहाँ मिलेगा, ढूंढ के निकालेंगे। जैसे दारू वाला हो ना, जो दारू पीता है ढूंढ के निकालता है, शादी में जाएगा ढूंढ के निकाल अड्डा कहाँ पे, वैसे भक्त जो है और चतुर होते वो जो है ढूंढ के निकालेंगे कि भगवान कहाँ है, सत्संग कहाँ है। तो लक्ष्मी नारायण कहते कि अभी तो हम लोग जो नीलाचल पर्वत की सुवर्ण रेती है उसमें अंतर्दान हो जाएंगे, लेकिन हमारे महान भक्त आएंगे इंद्रद्युम्न महाराज, वो हमें ढूंढ के निकालेंगे। और वही होता है कुछ समय के बाद इंद्रद्युम्न महाराज जब आते हैं तो वहाँ इंद्रद्युम्न महाराज सारी सभा वहाँ पर लगी है, मंत्री गणों से पूछते हैं इसी जन्म में मुझे साक्षात भगवान के दर्शन करने कहाँ होंगे। तो सब चर्चा चल रही है, इतने में एक ब्राह्मण देव आते हैं, भ्रमण करते करते वो कहते हैं इसी जीवन में भी हम साक्षात भगवान का दर्शन कर सकते हैं, कहाँ? पूर्व दिशा में आप जाएंगे वहाँ पर नीलाचल पर्वत है, वहाँ पर नील माधव भगवान है, वो साक्षात विराजमान है, आप अभी भी उनके दर्शन कर सकते हैं। तो वो एक अपने विद्यापति मंत्री को भेज देते हैं, वो जाकर वहाँ ढूंढ निकालता है, वापस आकर जब संदेश देता है, जब वापस इंद्रद्युम्न महाराज सारे सैन्यों के साथ जाते हैं लेकिन वहाँ नील माधव अदृश्य हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि जो शबर वहाँ सेवा कर रहे हैं उन्होंने शायद उनको छुपा के रखा होगा, तो उनको कैद कर लेते हैं, बंद पूरा गांव जो है उसको घेरा डालते हैं, उसको बंदिश कर लेते हैं, उनको कुछ पनिशमेंट देना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ आकाशवाणी होती है कि हे इंद्रद्युम्न, ये जो शबर है जिन्होंने कई सालों से मेरे सेवा की, इनका कोई दोष नहीं है, मैं अपनी इच्छा से एक अंतर्दान हुआ हूँ, अदृश्य हुआ हूँ, क्योंकि मुझे एक दूसरे रूप में प्रकट होना है, अलग रूप में प्रकट होना है, इसलिए आप चिंता मत करो, आप कल सुबह सुबह समंदर किनारे जाओ, वहाँ पर मैं दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। कोंकण में जब हम बोलते हैं दारू ब्रह्म, तो लोगों को लगता है कि दारू के ग्लास में ब्रह्म है। नहीं, वो दारू नहीं। दारू जो है संस्कृत में लकड़ी को दारू कहते हैं। लकड़ी जो होता है उसको दारू कहते हैं संस्कृत में। तो कई बार हम लोग जो प्रवचन करते हैं, लोगों तक दारू ब्रह्म है। अच्छा, दारू में कलयुग में भगवान दारू में प्रकट हो गए। नहीं, दारू लकड़ी में भगवान जो है, कहते कि लकड़ी एक वहाँ आएगी समुन्द्र किनारे, वहाँ से आप लकड़ी ले आओ और उसमें से विग्रह बनाओ, मूर्ति बनाओ। और तभी इंद्र ने मारा, दूसरे दिन जाते हैं और बड़े बड़े लकड़ी जो है डॉग्स वहाँ पर समुन्द्र किनारे तर रहे हैं। जब उनको निकालने जाते हैं, बड़े बड़े पहलवानों को भेजते हैं, खींच नहीं पाते, थोड़ा भी हिला नहीं पाते। फिर हाथियों को बुलाते हैं और उस साकल दंड डाल के उनको चेन से उनको खींचने की कोशिश करते, फिर भी खींच नहीं पाते, जरा भी हिलता नहीं है लकड़ी। फिर वापस इंद्रदेव महाराज हताश हो जाते हैं, क्या करें, कैसे निकाले। फिर आकाशवाणी होती है कि आप मेरे इतने सालों से जिन्होंने सेवा के शबर, जो जंगल में रहते, जो जंगल में घूमते, भ्रमण के शिकार करते, वही उनका बिजनेस है, ऐसे जो सेवा करते थे उनको वापस ले आइए। तो वापस वो आते हैं शबर, और जैसे हम लोग कोई छोटा सा लकड़ी उठा कर ले जाते हैं, वैसे वो सारे बड़े बड़े लकड़ी जो है उठा कर लेकर आए। और जब वो लेकर आए तो इंद्रदेव महाराज के महल में, और बड़े बड़े जो अभी वो तो स्वयं राजा है, देश के बड़े बड़े जो कारपेंटर्स हैं, सुतार मिस्त्री है, उनको बुला लाए, उनके छनी हथौड़ा सब लेकर आए, और बड़े बड़े मिस्त्री जो है उसको मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग थे, लेकिन एक लाइन भी वो खींच नहीं पा रहे थे। किसी का हथौड़ी टूट रहा था, किसी का छनी टूट रहा था, कोई चक्कर आके गिर रहा था, लेकिन कोई भी एक लाइन भी उस पर खींच नहीं पा रहे। वापस इंद्रदेव महाराज, मतलब सोचिए, जब हम भगवान को पाने की कोशिश करते हैं तो बार बार जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं कि हम निराश हो जाते हैं, लगता है कि शायद मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, शायद मुझे इसमें यश नहीं आएगा। लेकिन जब हम लोग लगे रहते, जब वृंदावन में माता यशोदा जब कृष्ण को बांध रही थी, दो उंगली कम पड़ रही थी, दूसरी रस्सी जोड़ी वापस दो उंगली कम पड़ रही, वापस तीसरी रस्सी जोड़ी, सारे वृंदावन के सारी रस्सियाँ जोड़ दी, फिर भी दो दो उंगली कम ही पड़ रही थी। लेकिन माता यशोदा ने सोचा नहीं कि चलो रस्सी कम पड़ रही है, किसी कमरे में बंद कर देते हैं, नहीं सोचा, प्लान चेंज नहीं किया, लगे रहे। और अंततः भगवान प्रसन्न हो गए, किससे, प्रयत्न से, जो कोशिश थी उससे प्रसन्न हो गए और खुद ही बंध गए। भगवान को कोई नहीं बांध सकता, लेकिन प्रसन्न करो तो बंध जाते हैं, किसके प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। तो वैसे इंद्रदेव महाराज वह एक लगे रहे, निराश हो रहे थे, हताश हो रहे थे, लेकिन छोड़ नहीं रहे थे। तभी वापस आकाश होने में कि और वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति आए, जी अभी बड़े बड़े यंग लोग थे, मिस्त्री थे, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति आकर वो कहते मैं मूर्ति बनाता हूँ। तो सारे मंत्रीगण थे, वो बाकी लोग थे, बाकी मिस्त्री थे, वो हंसने लगे, अरे हम लोग इतने जवान लोग, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, आप लोग क्या करेंगे, आप तो बूढ़ा है। और वो एकदम ऐसा हाथ कांप रहा है, उसका मुंडी हिल रहा है, ऐसा ऐसा वो कर रहा है। तो बोले ये क्या करेंगे, इंद्रदेव महाराज कहते कोई बात नहीं, इनको भी चांस दे दो। और फिर वो जो है जब मूर्ति बनाने वाले है, इतने में वो कहते कि देखो मेरा एक कंडीशन है, मेरा एक कंडीशन है कि जब तक मैं मूर्ति बनाऊंगा कोई अंदर आएगा, मुझे एकांत चाहिए, कोई मूर्ति बनाएगा नहीं, मूर्ति बनाने से कोई आएगा नहीं, कोई डिस्टर्ब करेगा नहीं, अगर आप किसी ने दरवाज़ा खोल दिया बीच में तो मैं आधा जो साहब बना रहेगा वो छोड़ के चला जाऊंगा। वो साधारण कोई मिस्त्री नहीं था, वो कौन थे, देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा थे। देवताओं के जो अलग अलग आयुध बनाते हैं, मूर्ति बनाते, वो विश्वकर्मा वो थे। तो वो वहाँ पर पहुँचे और जब उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, एक दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, हाथोड़े छने का आवाज़ आ रहा है, तो 4 दिन 5 दिन 8 दिन कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं, कुछ भी नहीं है रूम में, और मूर्ति बनाते जा रहे बनाते रहे। जैसे एक 11 दिन 12 दिन 14 दिन आवाज आना बंद हो गया। इंद्रदन महाराज, उनकी जो रानी थी गुंडीचा, उसे बड़ी चिंता होने लगे कि ये व्यक्ति एक तो वृद्ध है, बूढ़ा है, न खा रहा है न पी रहा है, 14 दिन हो गए कुछ भी उन्होंने किया नहीं है। तो कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कुछ शायद देहांत तो नहीं हुआ, मृत्यु तो नहीं हुई, तो उसे रहा नहीं गया। अंततः महारानी गुंडीचा, उन्होंने कहा कि दरवाजा खोल दो, तोड़ दो। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो जो मिस्त्री कौन स्वयं विश्वकर्मा थे, वो अंतर्धान हो गए। उन्होंने कहा देखो, मैंने कंडीशन डाला था कोई दरवाजा बीच में खोलेगा नहीं, और अगर खोल दिया जैसा है वैसा मैं छोड़ के चला जाऊंगा, तो चले गए। तभी इंद्रदन महाराज, इनको इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, मेरी वजह से स्वयं भगवान प्रकट होने वाले थे कि मेरी वजह से ये मूर्ति अधूरा रह गया, मेरे जैसा कोई अपराधी हो ही नहीं सकता, क्या जीवन में लाभ है, जिक्र करूँगा क्या मैं। इस तरह इतना उनको बुरा लगना, इतना बुरा लगा, और उन्होंने एक अमरण ऑपरेशन करने के लिए बैठ गए कि मुझे एक टिल लाइफ टिल डेथ फास्टिंग, अंत तक मैं जीवन के अंत तक उपोषण करूँगा और शरीर का त्याग करूँगा, क्योंकि भगवान के प्रति जितना हमने अपराध किया है जीने का कोई लाभ ही नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। तो उन्होंने एक जब उपोषण के लिए बैठ गए तो मतलब हर पल भगवान परीक्षा लेते हैं। जब हम कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं और खास करके दिव्य आत्म स्तर पर चलने की कोशिश करते हैं तो हर पग पे है संघर्ष आते हैं। लेकिन जैसे एक सोना, उसको जितना अग्नि में डालो और सही टेम्परेचर में रखो उतना ज़्यादा चमकता है। भक्त भी जो है जितने जितनी परीक्षाओं से गुजरते हैं उतने ज़्यादा शुद्ध होते और संसार का उद्धार करने के लिए और ज़्यादा तैयार होते हैं। संतों के जीवन में हम वही देखते हैं। तो इंद्रदन महाराज जब उपोषण के लिए बैठ जाते हैं तो वापस आकाशवाणी होते, हे इंद्रदन महाराज, आप चिंता नहीं करो, ये जो अधूरा विग्रह बना है ये अधूरा नहीं है, इस रूप में प्रकट होने की मेरी इच्छा थी, इसलिए इस प्रकार की लीला मैंने की है, ये मेरी इच्छा से अधूरा रहा है, अधूरा नहीं, ये मेरा एक स्वरूप है, ये मेरे भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए मैंने रूप धारण किया है। किसकी इच्छा पूर्ण करनी थी? नारद मुनि की इच्छा पूर्ण करनी थी। देखो कहाँ से क्या क्या लिंक रहते हैं, क्योंकि एक बार द्वारका में जो द्वारका की 16,000 रानियाँ है वो माता रोहिणी से कहते हैं कि देखो ये जो द्वारकाधीश है, हम इतनी सेवा करते हैं, सेवा के लिए इतनी तत्पर रहते हैं, हर क्षण जो चाहे हम लोग उनको देते रहते हैं, लेकिन पता नहीं जब ये रात को सोते हैं तो रात में चिल्लाते हैं, हे राधे हे राधे, मैया यशोदा, हे सुबल, हे किंकिनी, हे मधुमंगल। तो ये अभी भी वृंदावन को भूले नहीं हैं, अभी भी ब्रज को भुला नहीं पाए हैं। ऐसा ब्रज में क्या हुआ है, ऐसी ब्रज की क्या लीला है, क्या ये ब्रज की मधुरता है कि कृष्ण द्वारकाधीश भूल नहीं पा रहे, ऐसे क्या हमको एक बार सुना दो। क्योंकि द्वारका में एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रज लीला देखे थे, वो है रोहिणी, बलराम जी की माता। तो माता रोहिणी कहती कि देखो आप कुछ भी मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ, एक चीज मत बोलो, एक करने के लिए मत कहना। बोले क्यों? क्योंकि कृष्ण अगर ब्रज लीला को सुन लेंगे, एक बार भी अगर सुन लेंगे, इतना विरह उनको होगा वो रह नहीं पाएंगे द्वारका में, सीधा ब्रज चले जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे। एक बार तो गोपियों ने छोड़ा तक, अभी जाएंगे तो वापस छोड़ेंगे नहीं, हाँ वापस कृष्ण द्वारका नहीं आ पाएंगे, कृपा करके एक करने के लिए मत बोलो आप। तो सारी रानियाँ जो इतनी अधीर थी, इतनी आतुर थी सुनने के लिए, हम कुछ भी करेंगे लेकिन आपसे सुनना है बस, अब बाकी सारा बंदोबस्त हम लोग कर देते हैं, हम ऐसा महल चुनेंगे जहाँ कृष्ण आएंगे नहीं, ऊपर से हम लोग पहाड़ लगा देंगे वहाँ पे एक, और वॉचमैन किसको रखेंगे? किसी सिपाही को नहीं रखेंगे, किसी लेडी को रखना पड़ेगा, बोले सुभद्रा को रखते हैं, किसी रानी को रखेंगे तो कृष्ण आएंगे वो बाजू हो जाएंगे। इसलिए एक सुभद्रा को रखेंगे, सुभद्रा बहन है तो भाई बहन का तो चलता है, एक दूसरे के ऊपर अधिकार जमाते रहते हैं। इसलिए सुभद्रा रोक सकती है, बाकी द्वारका में और कोई नहीं रोक सकता उनको, तो सुभद्रा को हम लोग गेट पे रखेंगे ताकि कृष्ण अंदर नहीं आए और हम अंदर कथा सुनेंगे। और माता रोहिणी बैठती है और सारी 16,000 रानियाँ जो है, 16,108 रानी जो है वहाँ पर बैठी है, और इतनी सुंदर सुंदर लीलाएँ ब्रज की माता रोहिणी सुनाने लगती है कि कैसे कृष्ण छोटे से बालक है, इतनी यशोदा को चिंता होती थी। कभी कभी हमको लगता है भक्ति करना मतलब क्या, ओम शांति शांति शांति, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। लोगों को लगता है भक्ति मतलब करना मतलब शांति, नहीं, भक्ति करना मतलब सबसे ज़्यादा टेंशन होता है। यशोदा सबसे ऊंची भक्त है लेकिन शांति है क्या? नहीं, चिंता है। छोटा कन्हैया है, काना है, जैसे माता यशोदा स्नान कराती है कृष्ण तुरंत भागते और माता रोहिणी अंदर जाकर बाहर आने में दोनों गायब हो जाते। कृष्ण बलराम को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहना है, करधनी पैंजन चूड़ामणि सब कुछ पहनाने के बाद जैसे माता रोहिणी देखने आती है तो गायब है, दोनों आंगन से चले गए। ढूंढते ढूंढते गौशाला में पहुंच जाती है माता रोहिणी। गौशाला में देखते हैं कि कृष्ण और बलराम क्या कर रहे थे, वो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो बच्चे छोटे जब रंगते हैं तो खड़ा होने को सोचते हैं। आप जो बच्चे रंगते हैं तो वहाँ वो लोग जब आप खड़े रहेंगे तो आपका पैंट पकड़ेंगे, खड़े होने की कोशिश करेंगे, खंभे के पास जाएंगे उसको पकड़ने खड़े होने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे वो भी गौशाला में पहुँचे तो वहाँ देखा कि सबसे गाय का नीचे का जो अंग क्या है, पूंछ है, तो बछड़े ने उनकी पूंछ को पकड़ लिया। जैसे पूंछ को पकड़ लिया तो अगर बछड़े की पूंछ को पकड़ते बछड़े क्या करेंगे, भागेंगे, आग पीछे की पैर ऊपर करके बछड़े भागने लगे। और कृष्ण बलराम जो पूंछ को पकड़े वो छोड़ नहीं रहे, उनको लगा अगर छोड़ देंगे तो हम गिर जाएंगे, तो बछड़े को लगता है हमको किसने पकड़ा, वो भाग रहे। तो वहाँ सुबह सुबह का समय था, गोबर और गौमूत्र पड़ा था और गोबर और गौमूत्र के ऊपर कृष्ण बलराम दोनों का दुनिया का सबसे पहला स्केटिंग चल रहा है। दोनों जो है घसीटते हुए किस पे, गोबर और गौमूत्र के ऊपर घसीटते जा रहे, बछड़े आगे भाग रहे और दोनों पीछे पकड़ते पकड़ते घसीटते जा रहे। तब से उनका नाम पड़ा घसीटा राम। तो गोबर और गौमूत्र के ऊपर घसीटते जा रहे। ऐसे सुंदर सुंदर माता रोहिणी जब देखती है कि यहाँ ये सुंदर लीला हो रही है तो तालियां बजा कर, अरे यशोदा यशोदा जल्दी आओ जल्दी आओ, देखो क्या लीला हो रही है। और यशोदा भाग के आती है, देखती है और दोनों जाती है, दोनों को उठाती है, फिर वापस स्नान कराते, फिर वापस श्रृंगार करते, फिर वापस। तो हमेशा वो चिंता रहती थी माता यशोदा के मन में, कहाँ जाएगा तो नहीं, गौशाला में जाएगा कोई गाय का सिंग लगेगा, कहीं कुंपन में जाएगा कोई कांटा लगेगा या कोई पत्थर लगेगा, कोई गाय मार देगी, तो हमेशा वो चिंता रहती थी। तो भक्ति करना मतलब चिंता होती है लेकिन किसकी, भगवान की चिंता होती है। हम इस संसार में तो किसकी चिंता करते हैं, चिंता मनी, मनी की चिंता होती है। तो हमें इस संसार में जो है भौतिक चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, हम इस संसार में और फंसते जाते हैं। लेकिन जब भक्ति मार्ग में आते चिंता होती है, लेकिन भगवान के बारे में, सत्संग के बारे में, भक्तों के बारे में चिंता होती है, उससे क्या होता है, इस संसार की आसक्ति से हम उठ जाते हैं। इस तरह से माता यशोदा माता रोहिणी सुंदर लीलाएं बताते जा रहे सब वहाँ के हम कुछ दिन पहले चार धाम से आए हैं, तभी भी वो असर है। तो यहाँ इस प्रकार से तो इतनी सुंदर लीला सुनकर सारी रानियाँ जो है मंत्रमुग्ध हो गई, स्तब्ध हो गई, कुछ बाहर का विचार नहीं आ रहा है। और वहाँ बाहर गेट पे कौन थी? सुभद्रा की। तो वो भी इतनी सुंदर लीलाओं को सुनकर, कान कहाँ था? जो दरवाजे को जो फड़ होती है उसमें कान लगा कर बैठी है, और लीलाओं को सुनकर उनकी आंखें से बड़ी हो गई, हाथ ऐसे अंदर चले गए, पैर अंदर चले गए। जब व्यक्ति किसी की राह देखता है, और खासकर कोई प्रिय व्यक्ति आने वाला है, उसका अगर कोई राह देखता है, तो कभी कभी इतना बिजी हो जाता है, इतना उसका चिंतन बढ़ जाता है कि लोगों को हिलाना पड़ता रहे। कोई टीवी देख रहा है आजकल ना, या मोबाइल पे कुछ देखता है, तो उसको बोलना पड़ता है, मैया करे उठ, खाने का टाइम हो गया। नहीं तो वैसे सुभद्रा जो है पूरी तरह से भाव विभोर हो गई, पूरी तरह से महाभाव उसमें आ गया है। और थोड़ी देर में कृष्ण वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे कृष्ण पहुँचते हैं, तो वहाँ कृष्ण जब देखते कि सुभद्रा को क्या हो गया, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, हाथ अंदर चले गए, क्या हो गया ऐसा? तो कृष्ण देखते कान इसका यहाँ पर, तो कुछ तो सुन रहे। तो वापस कृष्ण वहाँ जब जाते, कृष्ण भी सुनने लगते। तो कृष्ण वो जब लीलाओं को सुनते, कैसे उन्होंने एक मृद भक्षण लीला की, भगवान कैसे इस संसार में हर चीज़ से कैसे प्रेम करते हैं। मृद भक्षण, जब माता यशोदा उनको स्नान कराने ले जाती है यमुना किनारे, तो कृष्ण माटी खाते हैं। और जब सबसे पूछते कि इसने माटी खाई, तो कृष्ण मैया मोरे मैं नहीं माटी खायो, मैंने माटी नहीं खाई है। फिर दाऊ जी से पूछते इसने माटी खाई, बोले हाँ इसने माटी खाई है। तो कृष्ण कहते देखो ये आज गेम में हार गए, इसलिए झूठ झूठ बोल रहे है, मैंने माटी खाई नहीं है। लेकिन यशोदा को बड़ी चिंता होती है, शायद अगर माटी खाई है तो पेट में बीमारी होगी, तो हमें उसको देखना होगा। तो उसको देखिए आप मुँह खोलो, छोटा सा मुख है, लेकिन कृष्ण ऐसा आ करके मुख खोलते हैं। माता यशोदा जब मुख में देखती है तो माटी नहीं दिखती है, क्या दिखता है? पूरा ब्रह्मांड दिखता है, पूरा ब्रह्मांड, उसमें 14 भुवन दिखते हैं, उसमें पृथ्वी लोक भी देखती है, उसमें ब्रज मंडल भी देखती है, ब्रज मंडल में एक वृंदावन देखती है, वृंदावन में नंद भवन, नंद भवन में यशोदा उसके मुख में देख रही, वो भी देख रहती है। इस प्रकार से कभी लोग सोचते हैं अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि एक छोटे से बाल गोपाल है, उसके मुख में ऐसे ब्रह्मांड को कैसे देख सकते, क्यों नहीं देख सकते? हम अगर यहाँ पे बैठे हैं तो बैठे बैठे हम इस हॉल में ये बड़ा सामने कोच किला पर्वत है उसको नहीं ला सकते, ला सकते नहीं ला सकते। लेकिन अगर आँख बंद करके हम लोग हिमालय अपने मन में ला सकते हैं। आँख बंद करो, अपना घर आ गए क्या? अंदर आ गए ना, अपना घर ला सकते, गांव ला सकते, हिमालय पर्वत ला सकते। तो मन में हम पर्वत ला सकते, कोई शहर ला सकते। मन से शक्तिशाली है बुद्धि, बुद्धि शक्तिशाली है आत्मा, और अहंकार, अहंकार शक्तिशाली है आत्मा, आत्मा से शक्तिशाली है परमात्मा, और परमात्मा से भी शक्तिशाली है भगवान। अगर मन के अंदर हम हिमालय सकते ला सकते, तो भगवान के मुख में ब्रह्मांड आने में क्या मुश्किल है? इस प्रकार से कृष्ण जब ये सुंदर लीला करते हैं, कृष्ण सब सुनते हैं, और वो भी जैसे सुभद्रा के साथ हुआ, पूरे मंत्र मुग्ध हो गए, भाव विभोर हो गए, महाभाव उनके अंदर आ गए। थोड़ी देर में बलराम जी आते हैं, तो उनकी भी वही अवस्था होती है, तीनों ब्रज लीला सुनकर इतने महाभाव में चले जाते हैं। तो वहाँ नारद मुनि त्रिकाल ज्ञानी है और भक्त में शिरोमणि है, वो इस संसार में एक विश्व में कहीं भी विशेष लीला अगर हो रही है वहाँ पहुँच जाते हैं। ये नारद मुनि का स्वभाव है। नारद मुनि बजाए बिना राधिका रामन भ्रमण नाम है, तो हमेशा राधा नाम कृष्ण नाम का भजन करते करते भ्रमण करते रहते हैं। और जैसे वहाँ पहुँच गए नारद मुनि, तो जब कीर्तन करने लगे, हरे नाम करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जैसे हरिनाम शुरू हुआ तो भगवान कृष्ण बलराम जी सुभद्रा सब बाह्य स्थिति में पूरे अंतर्मुख हो गए थे, बाह्य स्थिति में आ गए। और नारद मुनि जैसे देखा उनको, नारद मुनि कहते कि मैंने देखा। तो क्या देखा? उन्हें आपका एक विशेष रूप मैंने देखा, आप अपने ही एक ब्रज प्रेम में इतने महाभाव में चले गए थे, इतने प्रेम विभोर हो गए थे, वो रूप मैंने देखा है। तो मेरी विनती है कि कलयुग के लिए, क्योंकि कलयुग में जीव जो होंगे उनको भक्ति के प्रति आकर्षण बहुत कम होगा, भक्ति संसार में इतने व्यस्त हो जाएंगे, तो उस समय जीवों का उद्धार करने के लिए सबसे दयालु कृपालु प्रेम भरा ऐसा स्वरूप होना चाहिए, वही स्वरूप आप कलयुग के लिए प्रकट कीजिए। तो यहाँ नारद मुनि की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान कहते कि मेरी भक्त की इच्छा थी इस रूप में मुझे देखना है, प्रकट होना है, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने रूप अधूरा रखा है। ये अधूरा नहीं है, मेरा एक स्वरूप है, इस रूप में मैं प्रकट हुआ हूँ। इसलिए भगवान जैसे श्रीपाद शंकराचार्य इन्होंने चार धाम जो स्थापित किए हैं, बद्रीनाथ उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर द्वारका, दक्षिण की ओर रामेश्वर और पूर्व की ओर जगन्नाथपुरी। तो सतयुग में बद्रीनाथ की पूजा होती थी, अभी हम लोग चार धाम गए तो ऐसा लगा कि सतयुग के लोग आसानी से जाते होंगे शायद। अभी कलयुग के लोगों को गाड़ी में ट्रेन में जाने के बाद भी 8-10 दिन थके रहते हैं, लेकिन पुराने जमाने के लोग जो है हमेशा वो भ्रमण करते रहते चार धाम में। तो सतयुग में बद्रीनाथ की पूजा होती थी, त्रेतायुग में एक रामनाथ की पूजा होती थी, भगवान श्री रामचंद्र ने भगवान रामेश्वर की पूजा की थी, रामनाथ की पूजा होती थी, और द्वापर युग में द्वारकानाथ उनकी पूजा थी, स्वयं द्वारकाधीश आए थे तो द्वारकानाथ की पूजा होती थी, और कलयुग में जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए सारे जीवों का उद्धार करने के लिए। तो यहाँ भगवान जगन्नाथ जब प्रकट होते हैं तो इंद्रद्युम्न महाराज अलग अलग समंदर नदी और अलग अलग कुंड से तीर्थ जल लेकर आते हैं और हजारों हजारों कलश से उनका वहाँ पर अभिषेक होता है, और वही अभिषेक जो है स्नान यात्रा के रूप में आज भी उसका वहाँ पर उत्सव मनाते हैं। तो स्नान यात्रा जो है भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य दिन है, जिस दिन अभी 14 तारीख को जो स्नान यात्रा थी पूर्णिमा के दिन, तो स्नान यात्रा भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य दिन है। और उसके बाद स्नान यात्रा के बाद भगवान लीला करते हैं, क्या लीला करते हैं, बीमार हो जाते हैं, हम बहुत ठंडे पानी में ज़्यादा समय रहते हैं तो थोड़ा सर्दी हो जाता है, बुखार हो जाता है ना, तो वैसे जगन्नाथ को भी बुखार होता है, सर्दी होती है। भगवान को कोई संसार का जो पानी है या किसी कोई सर्दी बीमारी नहीं हो सकती, लेकिन भगवान भक्तों से सेवा लेने के लिए लीला करते हैं, भगवान को क्या भूख लगेगी, हाँ जिनके हृदय में मुख में ही ब्रह्मांड है उनको क्या भूख लगेगी, लेकिन फिर भी माता यशोदा के पास जाकर के तो मुझे भूख लगी है, हाँ लोनी खिलाओ, घर गए घर में जाकर लोनी चोरी करते हैं। तो ये भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों से सेवा लेने के लिए भगवान ने लीला करते, वैसे भगवान जगन्नाथ बीमार करने की भी लीला करते हैं। अभी भी जो पांडा है उनसे अगर आप प्रेम से पूछेंगे तो कहेंगे कि अगर ये 15 दिन जो होते हैं उसके होते हैं अनावसर, उस 15 दिन में भगवान का जो पेंटिंग करना है, जो रिपेयर करना है, सब कुछ जो है 15 दिन में होता है, और ये अनावसर के समय जो है 56 भोग बंद होते हैं, और उस समय जो है भगवान जगन्नाथ को जो जड़ी बूटी है, जंगल के जो अलग अलग प्रकार के काढ़े हैं, ये देते हैं जो बीमार व्यक्ति के लिए देते हैं। और ये 15 दिन के लिए जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही रहते हैं। जो वहाँ के पुजारी है, जो फल मूल जूसे सब कुछ, वो पुजारी और शबर जो होते हैं वो सेवा करते 15 दिन के लिए। और वो जो है वही वो लोग अंदर ही वो खाते हैं, जो बचा रहता है वहीं रखते हैं। 15 दिन तक वहाँ का कोई पदार्थ बाहर नहीं आता है, लेकिन 15 दिन के बाद जब बाहर आता है एक भी पदार्थ, 15 दिन अगर कुछ हम लगते हैं, फल भी होता है, सड़ जाता है। लेकिन ये वो सब जूसे से काढ़े है, फल है, कुछ भी सड़ता नहीं है, वैसा के वैसे फ्रेश रहता है 15 दिन के बाहर निकलने के बाद भी। वो भगवान जगन्नाथ की विशेष लीला है उस समय। और वहाँ उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ 500 वर्ष पर लीला करते थे, तो पूरे वर्ष में अलग अलग भक्त आते थे, चैतन्य महाप्रभु से मिलते थे, रोज चैतन्य महाप्रभु दर्शन के लिए आते थे। लेकिन जब ये 15 दिन स्नान यात्रा से रथ यात्रा जब दर्शन बंद होता है, तो चैतन्य महाप्रभु विरह को सहन नहीं कर पाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाते थे? अलालनाथ जाते थे। अभी भी अलालनाथ पे एक शिला है, तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जब विश्राम करते थे तो इतना उनका शरीर तप्त हो जाता था कि आज भी वो शिला के ऊपर जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु के अंग का स्पर्श होता था वो शिला पिघल जाते थे। अभी भी वो जहाँ खंदा लगता है, पीठ लगती है, वहाँ पर वो शिला जो है ऐसे पिघल गई है। तो इतना विरह होता था। और फिर जगन्नाथ रथ यात्रा के एक दिन पहले नेत्रोण मिलनम जो है उत्सव होता है, जहाँ 15 दिन दर्शन नहीं हुआ है और 15 दिन के बाद इतने हजारों हजारों पब्लिक जो है भगवान का दर्शन करने आते हैं। इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर लोग दर्शन करते हैं। और सच में हम एक बार गए थे वहाँ पर, सचमुच में लोग कैसे दर्शन के लिए इतने लालायित होते, इतने आतुर होते हैं वहाँ जगन्नाथपुर में। वहाँ बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। फिर दूसरे दिन जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव मनाते हैं। तो इस प्रकार एक भगवान जगन्नाथ इस सर्वसाधारण खाली विग्रह नहीं, प्रतिमान है तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। कई ऐसे सुंदर सुंदर लीला एक वहाँ पर हुई है। जैसे एक बार एक हैदराबाद से एक व्यक्ति गए थे, बहुत धनवान थे, तो बाकी लोग यात्रा चले जाते हैं तो चलो हम भी उनके साथ जाते हैं। कभी जैसे बोलते हैं ना कि जब यात्रा में लोग आते हैं, मराठी में उसे कहते हैं हौसे नौसे गौसे। मराठी में लोग कहते हैं कि यात्रा में कितने लोग आते हैं? 3 प्रकार के लोग आते हैं, हौसे नौसे गौसे। हौसे मतलब चलो पिकनिक के लिए जाते हैं, सब लोग जा रहे हैं घूमने के लिए जाते हैं, उसे कहते हैं हौसे हौसे न्याल। नौसे मतलब कोई नवस करने जाते हैं कि मुझे पुत्र चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो नवस करने जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अभी लोग यात्रा निकले तो चलो किसको रस्ते मिल गया, अरे चलो आ रहे हम लोग भी आ रहे, तो गौसु नान ले लें। तो उसको वो लोग भी आ जाते हैं। तो वैसे ये भी जो धनवान व्यक्ति तक ये भी उनके साथ एक बार चलो बाकी फैमिली जा रहे, खाना पीने का वादा हो जाएगा, चलो चले जाते हैं, तो भी आ गए वहाँ पे। लेकिन जगन्नाथ को जब उन्होंने देखा कि 56 भोग लग रहे हैं और सब हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये भगवान है। अगर ये आपके भगवान है तो मैं ऐसा भोग लगाना है, 1 लाख रुपए का भोग लगाना है। और सैकड़ों साल पहले जो इतना सस्ता था सब कुछ, हम लोग 40-45 साल पहले मुझे पता है 15-20 रुपए में बाजार करके आते थे गांव में लोग, घर से 20-25 रुपए में बाजार हो जाता था। लेकिन अभी तो 1000-5000 भी कम पड़ जाते हैं। तो उस समय 1 लाख रुपया मतलब अभी का 1 करोड़ रुपए हो गए। तो उसमें कैसे 1 लाख रुपए का भोग चढ़ा के कितना पूरा घी में भी बनाएंगे, सब कुछ सोने के पत्र में भी देंगे, फिर भी वो 1 लाख रुपये नहीं लगेगा, मैक्सिमम ज़्यादातर 400-500 रुपये में सब कुछ हो जाएगा। तो 1 लाख रुपये का भोग चढ़ाएंगे क्या? तभी एक सब पुजारी सब चिंता में है। अचानक से एक पुजारी भगवान को प्रार्थना करते हुए कहते कि देखो आपका इज्जत का सवाल, अगर आप भगवान है तो कुछ करो। तो पुजारी के सपने में भगवान आकर कहते हैं कि उसको बोलो कि मुझे भोग लगाने की जरूरत नहीं, खाली एक पान का बीड़ा जो मुझे खिलाओ, एक पान खिलाओ। लेकिन पान का जो मसाला है वो हस्तीगंड का मसाला होना चाहिए। हस्तीगंड मतलब जैसे उसने सुना तो समझ गया कि भगवान है। कि हस्तीगंड मतलब जो हाथी ब्रह्मचारी रहता है उसके मस्तक में गांठ होती है, तो गांठ निकालकर उसका चूर्ण बनाना, वो पान में डालना। वो जगन्नाथ जी ने बोला तो उसके लिए कितने हाथियों को मारना पड़ेगा, और एक हाथी तो कम से मिला 1,00,000 का, तब तो होगा 1,00,000 का। तो इतने हाथियों को मारना, और उसमें से वो कौन ब्रह्मचारी वो ढूंढ कर फिर बाद में उसके हस्तीगण से वो चूर्ण बनाना। तो समझ गया ये आइडिया जो है और दूसरा कोई दे नहीं सकता, स्वयं भगवान का ही है। तो आकर सीधा भगवान को दंडवत डाला और कहा कि भगवान मैं मान गया आप भगवान है, ये मेरे से नहीं होगा करके। उसके बाद वो व्यक्ति वहीं रह गया, मेहता करके जो व्यक्ति था, धनवान था। तो इस प्रकार से भगवान जी की जो है बहुत एक सुंदर सुंदर लीला होती है। तो आज हम यहाँ आए हैं और भगवान जगन्नाथ की यहाँ 3 तारीख को बड़ी रथ यात्रा महोत्सव होने वाला है, संडे है उस समय, तो उसमें भी हम भाग ले सकते हैं। कुछ दिन पहले स्नान यात्रा महोत्सव हुआ, तो भगवान की लीला अनंत है। जितना हम लोग श्रवण नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबूल है, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय, जितने लीला सुनते रहेंगे तो श्रवण करने से अपना हृदय शुद्ध होगा और भगवान के प्रति जो सुप्त अवस्था में प्रेम है वो धीरे धीरे जागृत होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान रूप रघुनाथ प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमको आज जगन्नाथ जी की कथा सुनाई। तो सबसे पहले हम उन भक्तों का और अतिथियों का स्वागत करना चाहेंगे जो पहली बार हमारे इस संडे फिस्ट कार्यक्रम में आए हैं। हमारे स्वागत अध्यक्ष श्रीमान चैतन्य रूप प्रभु और श्रीवल्लभ प्रभु आपका सही रूप से स्वागत करेंगे, और आपको कुछ मंदिर के विषय में या इस्कॉन संस्था के विषय में कुछ प्रश्न रहेंगे तो उसका भी सही सही उत्तर देंगे। वे पीछे श्रील प्रभुपाद के विग्रह के पीछे खड़े हैं। सभी जो पहली बार आए हुए भक्त हैं हम उनसे विनती करते हैं कि वे अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाए कि ताकि हम आपका समुचित स्वागत कर सकें। हरे कृष्णा। आप सभी जन आपका कीमती समय निकालकर आज के इस संडे फिस्ट कार्यक्रम में आए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हम श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी, गौरांग महाप्रभु, श्रीला प्रभुपाद और राधा मदन मोहन जी के चरण कमलों में यह प्रार्थना करते हैं कि आज का यह दिन आपकी उज्ज्वल कृष्ण भावनामय जीवन का एक शुभारंभ बने और आप प्रत्येक रविवार को इस कार्यक्रम में आकर हमें प्रोत्साहित करें। तो हम आप सभी को इस संडे फिस्ट कार्यक्रम में अपनी परंपरागत रीति से स्वागत करते हैं 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अभी 12 से 12:30 बजे तक महाआरती रहेगा, आरती में डांसिंग कीर्तन में भाग लीजिए। उसके पश्चात जाते समय आपको एक गिफ्ट, ये पुस्तक गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा, उसमें हरे कृष्ण महामंत्र का स्टिकर भी है, तो आप जाते समय श्रीमान श्रीवल्लभ प्रभु से अपना गिफ्ट भी लेते हुए जाइए। सभी जनों को एक लंच प्रसादम का कूपन दिया गया है। 12:30 बजे आपके लिए एक विशेष काउंटर लगाया है ललिता भवन में, वहाँ पे महाप्रसाद की व्यवस्था है, तो सभी जन लंच प्रसाद लेके ही घर जाए। हरे कृष्णा।